This is All India Radio. In a special program, now we bring you a bilingual discussion on WTO and strengthening multilateral trading system. The participants are financial analyst Professor Kumar Bijoy and T.K. Arun. Arjun J. Chaudhary, journalist, initiates and moderates the discussion.
In the program today, we have a number of issues facing this ministerial conference regarding strengthening of the World Trade Organization and, more importantly, the present circumstances. Abhi paristhitiya kya hai that compelling nations to question the importance and the relevance of World Trade Organization. To isko samajhne ke liye hamare do visheshagya hain, Shri T.K. Arun and Professor Kumar Bijoy. To T.K. Arun ji, aap se shuruaat karte hain. World Trade Organization 1995 mein formulate hua tha. Uske pehle GATT tha, General Agreement on Tariff and Trade, और ऐसे कई मुद्दे थे तब कि जो barriers to trade हैं, जैसे preferential treatment, quota, tariff और जो अन्य अलग जो barriers of trade हैं, जिससे कि trade facilitate नहीं हो पा रहा था, तो international organization जो एक तरह का treaty है, वो form किया गया ताकि there is some consistency on tariff and quota levels और जो other barriers of trade हैं, वो किसी न किसी तरह से remove की जाएं। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब मुद्दा ये है कि इसका relevance क्या है? ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं सर?
अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम का एनिमी नंबर वन बन चुका है. वो चाइना के ऊपर एक हमला डिक्लेयर कर रखा है. ये बोल रहे हैं कि हमारे जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट चाइना के मुताबिक जो है, अगर उससे कम नहीं करते हैं, चाइना के सारे इम्पोर्ट्स पे हेवी इम्पोर्ट ड्यूटी 25% तक डालेंगे. अभी देखिए, एवरेज अमेरिकन इम्पोर्ट ड्यूटी टैरिफ 2.5% होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा. कुछ आइटम है जिसपे टैरिफ हाई है, जैसे ट्रक्स पे इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी, उस पर 25% है. ब्लाउज टी शर्ट वगैरह पे 32% है, ऊपर रखा है, लेकिन एवरेज टैरिफ 2.5% है. लेकिन अभी बोल रहे हैं कि कुछ परसेंट में 10% रखा है अभी तक. अगर ये ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए चाइना राजी नहीं हुआ, उसके लिए जो भी शर्त अमेरिका ने सामने रखा है उसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देन दे विल रेज द टैरिफ टू 25%, 25% तक टैरिफ ले जाएंगे. इसका मतलब क्या है? ये यूनिलैटरल एक्शन है, एकपक्षीय एक्शन है अमेरिका की तरफ. ये नहीं जा रहे डब्ल्यूटीओ में. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गैट ने सबसे बड़ा फर्क यह है, उसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ले आया गया. तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डब्ल्यूटीओ का मैकेनिज्म इस्तेमाल करने के जगह अमेरिका चाहता है कि यूनिलैटरल वो एक्शन ले. ये मल्टीलैटरल सिस्टम का पूरा प्रिंसिपल के खिलाफ है. उस सिस्टम को पूरा अफसर करने की उसमें काबिलियत है. इसलिए इंडिया जैसे देश को रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से फायदा है. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों को उस पर रैली करके अमेरिका और चीन को ये हम अपील करें, उसके ऊपर दबाव डालें कि वे भी ये सिस्टम के अंदर काम करें, ना कि उसको तोड़ के बाहर से.
प्रोफेसर बिजॉय, अभी जो परिस्थितियां यही हैं कि यूएस यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, वो एक तरह से ट्राइब्यूनल है. उसमें तीन आर्बिट्रेटर्स बैठते हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट के विषय पर. अब इंडिया का ऑब्जेक्शन यही है, और भी जो देश हैं जो 22 मेंबर्स इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये यूएस सेंट्रिक है और हमारे जो परेशानियों की सुनवाई नहीं हो रही है. तो किस तरह से इस एपलेट बॉडी को, ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए इस मिनिस्टेरियल मीट के द्वारा?
एज यू राइटली सेड दैट 1995 इट स्टार्टेड एंड टिल 2007-8 थिंग्स वर एक्चुअली एज पर द चॉइस ऑफ दिस सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस where US and European Union were making it big. But after 2007-8, when the problem got severe for their economic conditions, they started looking into their benefits. The problem was there during the Obama period also. But later on when Trump came, he came with the philosophy of America first. And that America first, because of the very skewed trade relation with China, he started making it how it can turn into the favor to the USA. I'll give you some basic statistics which will make it very clear. Even as latest as 2018 statistics, which indicates that the import-export gap of US has risen like anything, where import is something around $540 billion from China and export is only $120 billion, which makes a deficit of something around $420 billion, which is actually, you can say, very alarming figure for USA to make it. That is one aspect why USA has made it. This fight is from 1st March 2018 onward, when US initiated, you know, we will be actually trying to minimize this kind of gap. Now, question is, multilateral rule-based trading system doesn't allow for unilateral decision, and which USA is taking. And that is the bone of contention right now. And it is something like a unilateral retaliations from US, then China, even as latest as China has made of that nature, where around approximately 5,140 items has been put into it. Now question arises here that this is between two or three economy who are very powerful. What about those economies who are developing in nature, those who are least developed countries, how they are going to have a stake into it? Ultimate objective is that there has to be smooth, frictionless trade system among the 164 nations who are right now member of this WTO, as well as even least developed countries. They have to be participative. Their facilitation should be there. Now, if it is not, then in that case, it is required. So, next year, which is there in Kazakhstan, June 2020, in that light, how these developing and least developed countries are going to present their view, how it has to be realigned, this is what in that light these 2 days meet, where India is not only hosting, India is leading the talk, has to be viewed with.
TK Arun ji, Professor Bijoy ne baat ki hai, jo developing countries aur jo less developed countries hain, unka ye kehna hai ki humare paas to ek special differential treatment ka clause hai treaty mein, kyunki World Trade Organization is basically a treaty, it's an international organization, but it's based on a multilateral agreement. But ye jo US ka America first unilateral action based policy hai, ek tarah se jo baki members hain, jo less powerful hai, wo koi enforcement action le nahi pate US ke against. Sanction jo hai wo US hi carry out karta hai, but baki desh US ke against sanction nahi le pa rahe. To already there is a multilateral framework, but koi enforcement provision nahi hai sir, escape clauses hain. To kis tarah se jo developing countries hain, less developing countries hain, wo US ka kaise samna karenge?
US ko samna karna mushkil hai, wo mumkin nahi hai, lekin kuch cheez hum kar sakte hain. Hamara trade US के साथ जितना है उसको कायम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड बाकी राज्यों से हम बढ़ा सकते हैं. अब चाइना से जो इम्पोर्ट यूएस में जा रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगा रहे, चाइना ये कोशिश करेगी कि कुछ चीजों को दूसरे कंट्री से डाइवर्ट करे. अभी सीधा चाइना से न एक्सपोर्ट करते हुए कुछ चीज वैल्यू एडिशन जो करता है वो वियतनाम से करा ले, या कोई थाईलैंड से, इंडोनेशिया से करा ले, और वहां से एक्सपोर्ट करवा लीजिए यूएस के लिए. कुछ चीज देर के बाद यूएस उसको भी कन्फर्म करेगा कि लोकल कंटेंट इतना होना चाहिए, ये सब बोलकर उसको भी कन्फर्म कर सकते हैं. ये असल में क्या है प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन का सबसे फायदा अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी का ही है. वो जब 20-30 साल पहले उन्होंने देखा कि अगर ग्लोबल प्रोडक्शन को अलग अलग जगहों पे किया जाए, कुछ थाईलैंड में, कुछ चाइना में, जिस जगह पे उसका करना सबसे फायदेमंद बनता है वहीं करवा लो, फिर वहां से दूसरे साइड पे इसको शिप कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए, वहां के कुछ असेंबली वैल्यू एडिशन वहां करा लीजिए, फाइनल असेंबली चाइना में करा लीजिए, फिर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर लीजिए, बाकी जगहों पर एक्सपोर्ट कर लीजिए. इस तरह करने से सबसे उनका फायदा है. लेकिन ऐसा ग्लोबल वैल्यू चेन्स बना के प्रोडक्शन कराना, इसे जब फायदा तो होता है उनको, लेकिन उसका लॉस जो है अमेरिकन लेबर को है. अमेरिकन लेबर को ये काम नहीं मिलता है, वो बाकी चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन जगहों पर चले जाते.
आप ऑफशोर आउटसोर्सिंग की बात करें.
हाँ जी, तो अगर ऑफशोर आउटसोर्सिंग करते हैं तो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी यही चाहते थे कि पूरा ट्रेडिंग ओपन हो. ऐसा नहीं है कि थाईलैंड में से जो वैल्यू बना के वो ताइवान भेजेंगे, उसके ऊपर ड्यूटी लगाया तो वो एक्सपेंसिव हो गया. तो वो चाहते थे वो ओपन ट्रेडिंग हो, ड्यूटी कम हो और सारा चले. लेकिन जब अमेरिकन लेबर को इसे घाटा हुआ तो उसको मैनेज करने का वहां का पॉलिटिकल सिस्टम उसमें काबिल नहीं हुआ. उस पॉलिटिकल फेलियर को उसका मैनिफेस्टेशन है बाहर. तो वो चाह रहे कि हमारे नौकरी जो चले गए हम उसको वापस ले आए. तो ट्रंप का कोशिश ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से चला गया उसको वापस कैसे लेके आए. ये तो नामुमकिन है. अगर वो करेंगे उसका कॉस्ट अमेरिकन कंज्यूमर पे आएगा. अगर चाइना से कोई चीज $1 पे आ रहा है और उसके ऊपर 25% ड्यूटी लगाया तो $1.25 पे वो बिकेगा, तो ज्यादा कॉस्टली चीज उसको देना पड़ेगा. अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों को उसका नुकसान लेना पड़ेगा. लेकिन ये सब होते हुए भी अगर कुछ अमेरिकन वोटर को, जो वहां के जो लेबर क्लास है जिसको नौकरी चला गया है, अगर उनको खुश करने के लिए करना जरूरी लगता है तो कर ले. तो ये वैसे ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर है. ग्लोबलाइजेशन से हम जैसे राज्यों को बहुत फायदा हुआ है. हमारे एक आईटी इंडस्ट्री है, लाखों लोग दुनिया के हर जगह जाकर काम करते हैं, पैसा वापस भेजते हैं, यहां पे घर बनाते हैं, चीजें खरीदते हैं।
रेमिटेंसेस की बात करते हैं।
हाँ, रेमिटेंसेस है, लोकल वैल्यू एडिशन है, इकोनॉमी चल रहा है, हम उसका फायदा उठाते हैं। चाइना उसका फायदा उठाया, अफ्रीकन कमोडिटी एक्सपोर्टर्स फायदा उठाया, तो पूरा दुनिया को उसका फायदा हुआ है। अगर उस प्रोसेस को रोक देते हैं तो हम सबको नुकसान है। तो हमारा सब इसमें एक ही एम होना चाहिए कि ग्लोबल सिस्टम ट्रेड एंड फाइनेंस चलते रहे, उसके बीच में प्रतिबंध बाधा न ले आया जाए। तो इसके लिए हम कोऑपरेट करके हमारे आपस के कुछ प्रॉब्लम सुलझे। अब देखिए, इंडिया का एक हिस्सा है इसमें। दोहा राउंड फेल करने में सबसे बड़ा जिम्मेदार इंडिया माना जाता है दुनिया भर में। हमारे एक फूड सब्सिडी के ऊपर हम एक बहुत हल्ला करते हैं और हम उसको टाल दिया, इसको पूरा स्टॉक को कोलैप्स करवा दिया। हम अपने सब्सिडी को रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। अब हमारे फूड सब्सिडी में प्रोडक्शन सब्सिडी और कंजम्पशन सब्सिडी दोनों उसमें एक जुड़ा के एक फूड सब्सिडी बिल दिखा देते हैं। अगर वो सेपरेट करवा देते हम WTO कम्प्लायंट एक सब्सिडी तरीका उनके ऊपर ले आ सकते हैं और हम उसमें राजी हो सकते हैं जो हम बाकी लोग हमसे मांग रहे हैं। इस तरह की चीज भी हम करवाना चाहिए।
अब प्रोफेसर बिजॉय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने आंकड़ों का बताया कि आप फूड जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सब्सिडी को अगर अलग अलग करें तो WTO जितने भी कम्प्लायंसेज हैं कि आपको इस तरह से ऑपरेट करना है, आप उससे कम्प्लायंट रहेंगे। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। जैसे जो US की पॉलिसी है जो फार्म सब्सिडी प्रोग्राम पर 1995 तक $61 बिलियन उन्होंने खर्च किया है अपने फार्म इंडस्ट्री पर सरकारी एक्सपेंडिचर, और 2016 में उन्होंने 61 से बढ़ाकर $135 बिलियन कर दिया है।
बिल्कुल,
तो वो कैसे कंप्लायंट हो रहे, हम कैसे कंप्लायंट नहीं हो रहे?
जैसे भी अरुण जी बता रहे थे, एक्चुअली जब आप किसी भी आइटम को जब रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, आपने कहा 131 बिलियन, बट उन्होंने क्या किया, उसको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग स्टेज पे दिखाया। होता क्या है कि अगर आप आइटम के प्रेजेंटेशन को सेपरेट कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, अमाउंट छोटा हो जाएगा, यू कैन कम्प्लाई विद। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल गेम है, इससे बड़ी बात नहीं कहेंगे। सबसे प्रमुख बात, अभी जो ये ट्रेड वार और यूनिलैटरल डिसीजन जो ले रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? आंसर है नहीं। अगर चाइना से आप जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें दो एस्पेक्ट है, एक चाइना से इम्पोर्ट आप चाइनीज कंपनी से चाइना का इसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, और एक अमेरिकन कंपनी वर्किंग इन चाइना से आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत सही कहे कि अमेरिकन कंपनी क्या करती है कि वो अपने लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं चाइना में थोड़ा सा लिविंग एंड स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज होने के कारण लेबर कॉस्ट मिनिमाइज्ड है, दैट्स अ वन। और सेकेंड एस्पेक्ट क्या होता है इसमें कि जो उनके जो करेंसी का भी, अगर हम करेंसी एक्सचेंज रेट को भी देखेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसमें यह है। लेकिन अगर आप इस तरीके से वहां उस पर अपना ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं तो वो ड्यूटी इम्पोजिशन आपको कोई बहुत हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आप उसको अमेरिकन को ही परेशानी में डालेंगे। और ये लेबर कोई फ्री सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अमेरिकन लेबर जिस प्राइस पे अवेलेबल है उस प्राइस पे चाइनीज लेबर अवेलेबल नहीं है, तो जो अमेरिकन फर्म्स हैं वही इस चीज के लिए रेडी नहीं होंगे और ये बहुत ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकता है। एक और यहाँ पॉइंट है क्या कि अमेरिका फर्स्ट के तहत वो क्या करना चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइज होना चाहते हैं। देखिए आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी इतना इंटीग्रेट कर चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखेंगे हाई हो चुका है, किसी भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंसीज के एनवायरमेंट में देखेंगे, इस एनवायरमेंट में अगर आप डी ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, इट इज समथिंग लाइक रिवर्सिंग द ऑर्डर, विच इज नॉट ओनली टफ, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल।
प्रोफेसर बिजॉय, करेंसी मैनिपुलेशन और एक्सचेंज रेट में मैं आपके पास आऊंगा। अरुण जी, पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से इंडिया और चाइना दोनों ही US पॉलिसी से अफेक्टेड हैं, और अभी जिस तरह से अगर हम ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के आंकड़े देखें, आपने पहले बात की थी कि US का जो लेबर है वो अफेक्टेड हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑनशोर की जगह ऑफशोर हो गया है। अब कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से ये ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है। हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम इम्पोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द US। पहले US की जो एक्सपोर्ट्स इंडिया वॉज अबाउट 8.5%, अब वो 5.7% हो गया, कम हो गया, और जो कमी है वो डाइवर्ट हो गया है हमारे ट्रेड एक्सचेंज विद चाइना। पहले चाइनीज एक्सपोर्ट्स वॉज 11% ऑफ आवर इम्पोर्ट्स, अब वो 16% हो गया। तो ये जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, किस तरह से चाइना और इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो US के इस चैलेंज से बच सके?
देखिए, ये एक फॉल्स परसेप्शन है। हर दो राज्यों का बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट या बैलेंस क्या है उसमें ज्यादा मायना नहीं है। मेन चीज है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसा है। हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 2.5% ऑफ GDP है, ये ठीक है। अगर वो 4% हो जाता है मुश्किल है। ये 2.5% बहुत चीजों की कुल मिला के जो आंकड़े हैं वो है। हम चाइना के साथ काफी डिफिसिट में हैं, लेकिन ताकि चाइना बड़ा मजबूत देश है, उसका इकोनॉमी बड़ा है, तेजी से बढ़ रहा है, वो अफ्रीका से बहुत सारी चीज इंपोर्ट कर लेते हैं, तो अफ्रीका में स्पेंडिंग पावर हो जाता है, वो अफ्रीकन देश हमारे भारत से कई चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, तो चाइना की अफ्रीका से जो इंपोर्ट होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका फायदा हमें हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए, ये नहीं है कि चाइना के तरफ हमारा कितना डिफिसिट है, कि ओवरऑल हमारा डिफिसिट क्या है। ये ओवरऑल हमारा डिफिसिट ठीक है, ज्यादा नहीं है। अब अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है, उनका करंट अकाउंट डिफिसिट और ट्रेड डिफिसिट ज्यादा है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं कि हर एक देश को लेकर उसको पकड़ के सिर पर मार के बोलो कि तुम्हारा हमारे तरफ एक्सपोर्ट कम करो और हमसे ज्यादा खरीदो, ऐसा नहीं होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट उसकी बराबर है जो हर देश का इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, इसका गैप जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक सेविंग, इसका गैप है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट के बराबर में वो प्रतिशत होता है। अगर अमेरिका में सेविंग कम है अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ही। चाइना में क्या है, चाइना में इस साल तक करंट अकाउंट सरप्लस था, बहुत बड़ा सरप्लस था, क्योंकि वहां बहुत सेव करते हैं, उससे कम इन्वेस्ट करते हैं। दे सेव अराउंड 50% ऑफ जीडीपी एंड दे इन्वेस्ट अराउंड 45% ऑफ जीडीपी। इट्स अ ह्यूज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट एंड द गैप इज ऑल्सो सब्सटेंशियल। इंडिया हैज अचीव्ड अ पीक रेट ऑफ अराउंड 35-36% ऑफ जीडीपी एज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ अराउंड 30-33%। टूडे आवर इन्वेस्टमेंट रेट इज लो, वी आर बिलो 30%। दैट इज वाई द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो ग्रेट। वी हैव टू पुश अप आवर इन्वेस्टमेंट रेट एंड पुश अप आवर सेविंग्स रेट। बट दिस गैप इज वॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द करंट अकाउंट डेफिसिट। एंड सो लॉन्ग एज द यूएस fails to increase the savings rate to come closer to the investment rate, they will have a current account deficit. And that doesn't depend upon trade policy. This is a macroeconomic identity. Actually, what is happening to China today is that their current account surplus has shrunk. Probably next year, they will have a current account deficit because they have stopped manipulating the currency and their internal living standards are improving. China also wants to orient itself towards a consumption-led economy because their capacity for investment is drying up. That is why now they are investing around the world. Their Belt and Road Initiative is trying to channel the surplus production they have in the investment goods into the equivalent of soft power, creating infrastructure around the world. And they are successful in doing this through their Belt and Road Initiative. Now, India is not in a position to actually replicate their Belt and Road Initiative, and nor do we have to. We still run a current account deficit, but not so large as to create a macroeconomic instability. Having a moderate current account deficit is good for us. It means we are being able to invest more than we save domestically. So we are drawing in some external investment. External savings are being augmented, are used to augment our domestic savings. And so we are able to invest more than we would be if we relied entirely on domestic savings. And this accelerates our growth rate. And this is what we should continue to have. But this is a matter of perception, that if we have a very large deficit with one particular country, then that country will think that they have a superior position and we are in an inferior position. And if you have a very large surplus with another country, that country will think we are being unfair, which is what is happening with Trump. Now, Trump accuses India also being a tariff king, jabki wo bilkul galat hai. India ka average tariff, applied tariff, weighted by trade, is around 7.5%. 7.5%, ye Korea ka equivalent rate kam hai, Brazil ka rate kam hai, aur they are much wealthier countries. The per capita income in these two countries is much higher.
But product portfolio में भी काफी फर्क पड़ता है। आप तो overall देख रहे हैं, but जो bilateral trade होता है उसमें product classifications होती है और product exchange हो रहा है, which may not be the same between India and other countries.
देखिए, product सिर्फ देखना वो भी गलत है। America has a deficit in trade in goods, but there is surplus in trade in services. Trade in services and repatriation of profits, factory incomes. America has surplus. So by refocusing only on trade in goods, we are doing ourselves a disservice. So India has actually done a very positive thing by also focusing on services. We are saying, while you talk about trade in goods and say that we should absorb more of your goods, please also look at services and look at the things you are doing to crimp our export of services. You are preventing our people from going onshore and delivering services there. You are refusing to let our chartered accountants practice or do stuff for your companies on the ground that they don't comply with your certification process. You are refusing to allow various services on the ground that they don't fit their standards. So these are all non-tariff barriers of various kinds in trade and services. So we are saying, remove those barriers.
प्रोफेसर बिजॉय, एक बड़ी अहम बात की है अरुण जी ने मूवमेंट ऑफ लेबर को लेकर। यूरोपियन यूनियन की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक तरह से वीजा फ्री एनवायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया था ताकि पोलैंड जैसे देश से कोई यूके में जाके काम कर सकता है। बट अब क्या हुआ कि ब्रेक्सिट हो गया। ब्रेक्सिट इसलिए हुआ है क्योंकि यूके के जो निवासी है वो नहीं चाहते कि किसी और देश से लेबर आए उनके यहां पर काम करे और उनकी रोजगार छीन ले। एक तरह से हम यूएस और दूसरे देशों के बीच में जो एक्सचेंज है वहां पर भी यही देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग एंड सर्विसेज है जो उन्होंने WTO में इंट्रोड्यूस किया था अलॉन्ग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स बढ़ा देंगे। तो यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज और लेस डेवलपिंग कंट्रीज क्या पॉलिसी बना के आगे चलेगा, क्योंकि जो पहले ब्यूनस आयर्स में जो मिनिस्टेरियल मीट हुआ था उसमें तो डेडलॉक आया है, इस मिनिस्टेरियल मीट में क्या रेजोल्यूशन पास होगा?
इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप एक खुले विचार से बैठे मंच पर और बात करें, सुनें। अरुण जी बहुत सही बता रहे थे कि भाई आप टैरिफ बैरियर तो नहीं लगा रहे हो लेकिन कुछ बैरियर लगा रहे हो, कह रहे हो कि जी आपके जो लेबर है वो सब स्टैंडर्ड है, आपके CA, आपके लॉयर, आपके इंजीनियर हमारे इंजीनियर के बराबर नहीं है और इसके कारण हम उनको वो जॉब नहीं दे सकते हैं। देखिए जब फ्री ट्रेड की बात उठती है और फ्री ट्रेड में है कि जिसके पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स लेके जाएगा तभी वो एक्चुअल फ्री ट्रेड होता है। इस पर ILO वगैरह में भी काफी चर्चा उठी है, इंडिया ने उठाया है समय समय पर। होता है कि इंडिया के पास स्किल है, इंडिया के पास ये क्वेश्चन उठता है रिकॉग्निशन, और कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारे स्किल को अगर कोई बाहर वाला रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो हम एक्चुअली स्किल्ड नहीं है। अगर नहीं भी है तो हमारे पास इतनी व्यवस्था है, इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको उसके अकॉर्डिंगली स्किल बना सकते हैं। बट एज ए पॉलिसी दे शुड बी अलाउड टू गो एंड वर्क। जैसे वो आप वहां से USA इंडिया आ रहा है, अगर वहां की अमेरिकन कंपनी यहां आती है तो वो अपना कैपिटल लेके आते हैं क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल चीपर है, कैपिटल लेके आते हैं। इंडिया इज ए लेबर इंटेंसिव कंट्री, और अगर इंडियन फर्म अगर US जा रहा है तो अगर इंडियन फर्म कैपिटल रेज करना है इंटरनेशनली और अगर लेबर भी कंपल्सरली वहीं से रखना है जो हाई कॉस्ट लेबर होगा तो फिर इसके लिए ग्लोबल वायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये एक आस्पेक्ट है। सेकेंड आस्पेक्ट ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है। जैसे चाइना के साथ भी अगर डिस्गाइज में देखा जाए, बता रहे हैं कि चाइना ने कहा है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, जब आपकी कंपनियां यहां आती हैं तो आप टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे।
तो प्रॉब्लम है पायरेसी की, काउंटरफिटिंग की, स्मगलिंग की,
ऑफकोर्स ये इश्यूज को रेज किया जा सकता है। लेकिन है कि जब आप ट्रांसफर की बात करते हैं, आप देखिए जब तक आप शेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक आप देखिए आप ज्वाइंट वेंचर भी बनाने को तैयार हो लेकिन आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं हो, तो ये सब इश्यूज हैं, ये मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जब तक इसका निदान नहीं निकलता तब तक ये हो नहीं सकता। एक प्रश्न जो आपने शुरू में पूछा था कि ये जो विकासशील देश और अल्प विकसित देश जो हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनका जो आने वाला कॉन्फ्रेंस है इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कैसे रखा जाएगा? देखिए होता क्या है कि जो यहां बहुमत है और बहुमत में क्या है कि जो बड़े बड़े देश हैं उनका एक मत बड़ा मत बन जाता है, और जब तक वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है कि इस पर एक उदार विचारधारा से किसी तरह का निर्णय लिया जा सके। आप देखिएगा UN सेक्रेटरी जनरल ने भी 3-4 दिन पहले, जो गुटेरेस साहब ने भी एक अपने आशंका जाहिर की कि एक WTO जैसा इंस्टीट्यूशन डेडलॉक में अगर फंसा रहेगा तो फिर कैसे वर्क होगा। उसी तरीके से आप यहां भी देखिए कि जो डायरेक्टर जनरल जो WTO के हैं वो एड्रेस कर रहे हैं, और ये एड्रेसल जो है ये एक उम्मीद को ढूंढा जा रहा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल तैयार हो जहां खास करके ये जो दो दिन का कल की और आज वाली जो मीट है इसमें चाइना भी प्रेजेंट है, ब्राजील भी प्रेजेंट है, 16 देश हैं जो विकासशील हैं और 6 लिस्ट डेवलप्ड हैं। ये जो 22 देश हैं ये कुछ न कुछ इस तरह का एक कह सकते हैं प्रपोजल निकाल के लाएंगे, एक इस तरह के प्रस्तावना रखेंगे जिस पर विचार किया जाएगा और ब्यूनस आयर्स वाला जो केस है वो अगले वाले में नहीं होगा। और इस तरह के राउंड ऑफ द मीटिंग की अभी जरूरत है। 2020 के जून से पहले अभी साल भर है, इस साल भर में कम से कम 3-4 ऐसी मीटिंग होनी जरूरी है ताकि उसमें एक सही निर्णय निकल सके।
ठीक है अरुण जी, अभी तो निर्णय निकालना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन पास होगा तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो 22 देश हैं उन्होंने क्या सोच के क्या निर्णय करके उन्होंने फैसला लिया है। मैं आपके अटेंशन में ड्रॉ करना चाहता हूं, आपने सब्सिडी की बात की इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंडिया काफी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स हैव बीन बूमिंग एज वेल, और यहां पे आप किस तरह से देखेंगे कि हम प्राइस कंपेटिटिव हैं ग्लोबली। यूएस ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए हैं शुगर पैकेज पर, व्हीट एंड राइस एक्सपोर्ट्स पर, और जो दूसरा कैटेगरी जिससे मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो जेनेरिक ड्रग्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे जो उनका रेगुलेटर है एफडीए वो यहां पहुंच जाता है और फिर ऑब्जेक्शंस उठाता है ताकि यहां से एक्सपोर्ट ना हो सके हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो ये जो दोनों इंडस्ट्रीज है इसमें किस तरह का रेजोल्यूशन ये मिनिस्टीरियल मीट पास कर पाएगा?
देखिए फार्मा में ये सब्सिडी का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो क्वालिटी का है और क्वालिटी का उनका कंप्लेंट सही कंप्लेंट है और उनके जो इंस्पेक्शंस है वो हमारी क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद देगी, तो उसमें कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जो सब्सिडी के नाम पे वो एक्सपोर्ट को रोकते हैं उसमें मामला डब्ल्यूटीओ में जाके डिस्प्यूट सेटलमेंट में रिजोल्व करना चाहिए। दूसरी एक चीज यह है मल्टीलैटरल प्रोसेस सिर्फ ट्रेड पर नहीं है, वो बहुत सारी चीजों पर है। वो है जियो पोलिटिकल कोऑपरेशन में है, वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लागू करने में है। इन सब चीजों में अलग अलग देशों का हित अलग अलग है। यूरोपियन यूनियन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में काफी उत्साहित प्रोएक्टिव है, तो वो जो कंसर्न चाहते हैं हम देने के लिए ज्यादा एंथुसियाज्म दिखाएंगे जब ट्रेड पे वो हमारे साथ देंगे विदाउट द यूएस। और जियो पोलिटिकल अलायंस में जो अलाइनमेंट्स है उनमें भी चाइना इंडिया बाकी सब देश यूएस के साथ कोऑपरेट तब कर सकते हैं जब वो ट्रेड में भी थोड़ा कंसेशन दिखाए। तो दिस इज अ चेस गेम, वी डोंट जस्ट लुक एट वन मूव इन वन पर्टिकुलर थिंग, यू आर मूविंग अ पॉन हियर सो दैट यू बी एबल टू मूव योर नाइट समवेयर एल्स, सो यू हैव टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इन द टोटैलिटी। आई डोंट नो इफ यू एक्चुअली हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। टिपिकली सरकार तो साइलोज में चलते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री एक चीज दिखाते हैं और बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरा है एक और डिफेंस मिनिस्ट्री दूसरा है, ऐसा नहीं है। हम पूरे इकट्ठे होकर उसको देखना चाहिए।
प्रोफेसर बिजॉय, आपने करेंसी मैनिपुलेशन की बात की थी और जो जिस तरह से यूएस डॉलर ग्लोबली एक इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में दैट इज अ प्रिफर्ड करेंसी, उसके बाद बाकी करेंसीज आती हैं इन द लाइन ऑफ इम्पोर्टेंस। तो यहां पर जैसे आपने कहा कि अगर जो करेंसी डिवेल्यूएशन अप्रिसिएशन से टैरिफ रेट ऑफसेट होता है, बट यूएस तो चाहता है कि ट्रेड सरप्लस भी हो हर देश के साथ और उनकी करेंसी जो है वो ऊपर रहे, जबकि हमने देखा है कि चाइना ने अपना जो ऑफशोर आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी जिसका फायदा लिया है वो युआन के डिवेल्यूएशन से लिया है।
बिल्कुल।
तो यूएस इसको किस तरह से एड्रेस कर रहा है?
देखिए ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो डायकॉटमी एंड डायलेमा में है। डॉलर जब जब एप्रिसिएट करता रहेगा तब तक यूएस को इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड प्वाइंट आप देखिएगा कि इसको थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट से भी आप लेके चलिए कि एक ह्यूज क्वांटम ऑफ यूएसडी इज स्टोर्ड बाय चाइनीज एंड स्टोर्ड ही नहीं है, अगर आप एक्सटर्नल डेट की बात करें जो पब्लिक डेट यूएस का है जो फॉरेन कंट्रीज होल्ड कर रहे हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 28% इन द अमाउंट टर्म अराउंड 1.12 ट्रिलियन डॉलर चाइना होल्ड कर रहा है। और अगर आप कैपिटल मार्केट की तरफ से अगर टर्न करें तो भी थोड़ा देखेंगे चाइना के हाथ में थोड़ा मतलब अपर हैंड बन रहा है इस मामले में, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट गेम को बिगाड़ सकता है। तो इन सब को ध्यान में रखें, ये जैसे अरुण जी बहुत सही तरीके से बोल रहे थे कि इट कांट बी ए पॉइंट टू पॉइंट गेम, इट कांट बी ए बॉल टू बॉल एक्सरसाइज कि हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगता है, आपको हर हाल में एक ओवरऑल मैच की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। उसी तरह ओवरऑल जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल देखने की जरूरत है, उसी तरह ठीक है चाइना के साथ थोड़े से स्क्यूनेस को कम किया जा सकता है लेकिन आप चाहेंगे कि हर जगह सरप्लस हो वो संभव नहीं है, एंड योर करेंसी ऑल्सो हैज टू बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंगली।
अरुण जी मैं आपसे फाइनली पूछना चाहूंगा ई कॉमर्स के बारे में, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के वजह से आप गुड्स जो हैं किसी एक देश से दूसरे देश को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज में रिलैक्सेशन आ गई है और सर्कमवेंशन भी है इसमें, और अब ब्रिक एंड मोर्टर की जरूरत नहीं है, अगर आपको कुछ बेचना है तो रिटेल स्पेस उस देश में होने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह से इस मिनिस्टेरियल मीट में ये एक नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को अपनाएंगे?
अब देखिए हमारा कोई क्लैरिटी इस पॉलिसी में है नहीं। हमारा सबसे बड़ा एफडीआई इनफ्लो वॉलमार्ट की तरफ से हुआ फ्लिपकार्ट खरीदने में, लेकिन उसके तुरंत बाद हमने अपना एफडीआई रूल इन ई कॉमर्स बदल दिए। बाकी बाहर के लोग इससे थोड़ा हताश है कि किस तरफ आपका पॉलिसी बदलता रहता है कुछ डोमेस्टिक प्लेयर को फेवर करने के लिए। तो देखिए ग्लोबल ई कॉमर्स अलग बात है, पहले तो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी साफ हो, अगर वो पहले साफ हो जाता है फिर उस लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक बाकी ग्लोबल प्लेयर्स को भी ले आ सकते हैं।
ठीक है श्री टीके अरुण जी और प्रोफेसर बिजॉय, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमसे बात की डब्ल्यूटीओ मिनिस्टेरियल मीट पर और जो मल्टीलैटरल रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को किस तरह से मजबूत करे, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस प्रोग्राम.
थैंक यू.
धन्यवाद.
You are listening to a discussion on WTO and strengthening multilateral trading system. The participants were financial analyst Professor Kumar Bijoy and T.K. Arun. Arjun J. Chaudhary, journalist, initiated and moderated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com.